हरे कृष्णा। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे सूर्य ओम शिव प्रभु का, महाभागवत प्रभु, इनके परिवार को जिन्होंने आज हमें प्रवेश दिया है श्री पुरी धाम में। अगले हफ्ते जगन्नाथ पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनकी रथ यात्रा, वार्षिक रथ यात्रा जो होती है 24 तारीख को है। और गौड़िया वैष्णवों के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी और विशेष रूप से उनकी रथ यात्रा का बहुत महत्व है। जैसे आप देखोगे जो सुंदर दर्शन है ऑल्टर पर जगन्नाथ जी का, इसके पीछे बैकड्रॉप पर आप ही ने पेंटिंग किया, माँ भागवत प्रभु ने पेंटिंग किया है। द्वारका में रोहिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की लीला सुना रही हैं द्वारका वासियों को, और ये पूरी जगन्नाथ की कथा या जगन्नाथ जी का आविर्भाव इसी कथा के पीछे है। जगन्नाथ जी और बलदेव, कृष्ण बलराम और सुभद्रा उनकी बहन, उन्हें आदेश नहीं था अंदर आने का, इसलिए सुभद्रा देवी को बाहर दरवाजे पर खड़ा किया गया एक पहरेदार के रूप में, ताकि कृष्ण बलराम न आ जाए। परंतु क्या यह संभव है? जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम की लीला सुनाई जाए और वहां वो मौजूद न हो, क्या यह संभव है? और कहीं वो मौजूद न हो, यह संभव है? बोल दिए भगवान नारद मुनि को, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मदभक्त तत्र तिष्ठामि नारद, कि न तो मैं अपने वैकुंठ धाम में, तो कोई पूछेगा भैया वैकुंठ धाम में भगवान नहीं तो फिर वैकुंठ का अर्थ क्या? भगवान इससे ये दर्शा रहे हैं कि वैकुंठ धाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान का श्रवण कीर्तन, वो है वास्तविक वैकुंठ धाम। तो यदि ये पूछा जाए कि वैकुंठ धाम की विशेषता क्या है, जहां वैकुंठ पति निवास करते हैं, और भगवान कहते हैं कि जहां मेरे भक्त एकत्रित होकर मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं वहां मैं मौजूद हूं, तो वो क्या हुआ? वैकुंठ धाम। तो आज ये जो सुंदर भवन, ये घर है, आज नहीं बल्कि यहां पर तो रोज इनकी सेवा होती है, श्रवण कीर्तन, आरती, भोग इत्यादि, तो ये क्या हुआ? वैकुंठ धाम। तो भगवान गीता में क्या कहे हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जो मेरे वैकुंठ धाम पर एक बार आ जाता है फिर घर नहीं लौटता। तो आप फोन कर देना आज कि संभावना कम है आज वापस आने की, चलेगा? अब देखिए, रोहिणी देवी वो द्वारका वासियों को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की वृंदावन की लीला सुना रही। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो वृंदावन की लीलाएं हैं वो इतनी ज्यादा मनमोहक हैं, किसके लिए? हम सब के लिए तो है ही, परंतु स्वयं कृष्ण और बलराम के लिए। जैसे हमारे लिए हमारी लीलाएं मनमोहक होती हैं, जब कोई हमारे विषय में चर्चा करता है तो हमारी भी आंखें और कान जगन्नाथ जी जैसे बड़े हो जाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि हमारे नाम का कोई और व्यक्ति, उसकी चर्चा हो रही है परंतु फिर भी उसमें भी हम चौकन्ना हो जाते हैं, शायद हो सकता है कि मेरे संदर्भ में कुछ चर्चा चल रही है। ये प्रवृत्ति भगवान से ही हमें मिली है। तो ये जो जगन्नाथ जी का रूप है, कई बार समझ में नहीं आता हमें कि भगवान का कैसा रूप है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, हाथ अंदर धंसे हुए, पैर तो दिख ही नहीं रहे, ये कैसा रूप, कैसे इस रूप को समझा जाए? परंतु ये रूप इस प्रकार का है भगवान का कि भगवान दर्शा रहे हैं कि जब स्वयं भगवान अपने विषय में सुनते हैं तो ये हाल होता है उनका। तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब हम उनके विषय में सुने तो हमारा भी कुछ ऐसा हाल होना चाहिए। यदि ऐसा हाल नहीं हो रहा, हम एक जो पहलू है जगन्नाथ जी का उसके संदर्भ में हम ठीक फिट बैठ सकते हैं, 56 भोग, परंतु वो तो बाद में, उसके पहले श्रवण कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो भगवान सोते हुए, ये चर्चा चल रही है रुक्मिणी देवी और सत्यभामा, तो रुक्मिणी सत्यभामा से कहती है कि सत्य हे भामे, ये जो कृष्ण हैं ये रात में गोपियों के नाम लेते रहते हैं, राधे राधे राधे, इस प्रकार से, विशेष रूप से राधा रानी का नाम। तो सत्यभामा कहती हैं कि अरे रात तो छोड़ दो, पूरे दिन भर इनके मुख से राधे राधे निकलता रहता। तो इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से क्या करते थे, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, कि भगवान जब द्वारका में भी थे इतने ऐश्वर्य में, क्या द्वारका का ऐश्वर्य था, 16,108 महल, केवल उतना ही नहीं बल्कि पूरी नगरी वो एक द्वीप पर बसाई हुई थी भगवान ने। कई बार लोग जब छुट्टियां मनाने जाते हैं तो इस प्रकार के स्पॉट्स ढूंढते हैं ना, आइलैंड पर चारों तरफ समुद्र, पानी, जल। तो ऐसा ऐश्वर्य द्वारका का, एक एक महल में एक एक जो फर्नीचर या फर्शी या खंबे या दरवाजे, जो कुछ उत्कृष्ट। और ऐसा नहीं यहां वहां से मंगाया था भगवान ने, ऐसा नहीं कि वो 16,108 महल में मार्बल लगाने के लिए जयपुर से या इटली से कुछ मार्बल मंगाया था, स्वयं भगवान अपनी शक्ति से सब कुछ उत्पन्न किए। 16,108 रानियां और इतने सारे बच्चे, उनके बच्चे, बहुत बड़ा फैमिली था भगवान का। भागवत पढ़ो आप, एक एक रानियों से 10-10 बच्चे, उनके 10-10। परंतु भगवान ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं, इतने पूरे ऐश्वर्य में भगवान को याद आ रहे हैं ब्रजवासी। तो भगवान इससे क्या दर्शा रहे थे? ये दर्शा रहे थे कि हम भी चाहे कितने भी ऐश्वर्य में रहें, हमारा ध्यान कहां बना रहना चाहिए, हमारे उद्देश्य क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। ये बहुत सुंदर कोट में पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बिना इंद्रिय संयम के हमारे अंदर शिष्टता नहीं आएगी। विदाउट सेल्फ कंट्रोल देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसिप्लिन। और बिना गुरु के आदेशों के पालन के हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो उद्देश्य है, यहां श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवत धाम जाना, परंतु बिना ये इंद्रिय संयम, आदेशों का पालन, गुरु की सेवा, डिसिप्लिन, इसके बिना भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। जैसे यदि आपको किसी दूसरे देश में जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, टिकट होना चाहिए, उसके बावजूद लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर भी लगा कि ठीक कुछ नहीं लगा, भेज देते हैं, बोला अरे वीजा है मेरा, तो क्या? नहीं, आपका चेहरा अच्छा नहीं लगा। होता है ऐसे। तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है बहुत ही विशेष है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कितने वर्ष बिताए उन्होंने? 18 वर्ष। सोचिए, श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर कितने साल थे? 48। 48 सालों में 18 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। केवल इसी से समझ में आ सकता है कि जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथ जी का क्या महत्व है। क्यों? अब देखिए, जगन्नाथ जी कौन है? स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे। तो जगन्नाथ जी हैं स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण। तो ये क्या हो रहा है जगन्नाथपुरी में? डबल रोल। परंतु दोनों में कुछ तो अंतर है, कुछ भिन्नता है। क्या भिन्नता होगी? चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार, भक्त के रूप में। किसके भक्त? जगन्नाथ जी के। और जगन्नाथ जी कौन? चैतन्य महाप्रभु। देखिए, जैसे हमने अभी इस कथा की चर्चा की कि रोहिणी देवी वो कृष्ण बलराम की लीलाएं सुना रही हैं वृंदावन की, और सुभद्रा पहरेदार के रूप में दरवाजे पर खड़ी है, तो सुभद्रा वो भी, सुभद्रा देवी सुनते हुए उनकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उनके भी सारे जो अंग हैं वो भाव विभोर अवस्था में जकड़ जाते हैं। और कृष्ण और बलराम वो वहां पहुंचते हैं, वो जब सुभद्रा मैया को देखते हैं तो वो भी कान लगाकर दरवाजे पर सुनते हैं, और उनका भी यही हाल होता है। तो तीनों का ये जो रूप है, बड़ी बड़ी आंखें, ये उनके अंग एकदम अकड़ गए, जकड़ गए। ये है जब वो महसूस कर रहे हैं विप्रलंब वृंदावन धाम से। तो जगन्नाथ जी का स्वरूप क्या है? सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन धाम। और चैतन्य महाप्रभु किस रूप में है? राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी के भाव में। तो राधा रानी तो वृंदावन में ही रही, और हम ये भी लीला जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गए और वहां पर जब राधा रानी गोपियों के साथ, नंद यशोदा के साथ भेंट हुई, तो वहां राधा रानी और गोपियों ने ये निर्णय लिया कि यहां से ये द्वारकाधीश कृष्ण का जो रूप है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इतना ऐश्वर्य मुकुट और ये सारे आभूषण, राजसी ठाट बाट, नहीं, ये हमारा कृष्ण नहीं। हमारा कृष्ण ऐसे है, केवल एक बांसुरी, पीतांबर, मोर मुकुट और वनमाला। तो कुरुक्षेत्र से वृंदावन कृष्ण और बलराम को ले जाने की जो क्रिया, जो योजना बनाई, वो है रथ यात्रा। राधा रानी कृष्ण और बलराम को, और गोपियां कृष्ण और बलराम को अपने हृदय रूपी रथ पर बिठाकर कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रही। इसे कहते हैं रथ यात्रा। तो राधा रानी वो विप्रलंब में हैं, वो वियोग में हैं भगवान श्री कृष्ण के, और यहां कृष्ण वियोग में हैं वृंदावन धाम श्रीमती राधा रानी के। तो यदि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी आमने सामने जब आते हैं तो दोनों वियोग में हैं। एक वियोग में है श्री वृंदावन धाम के, एक वियोग में है श्री कृष्ण के। दोनों में कोई अंतर? तो अब हम जो साधक हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में, तो हम कैसे समझें दोनों को, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी? बहुत घनिष्ठ संबंध है इन दोनों का, विशेष रूप से हमारे लिए, क्योंकि हम श्री वृंदावन धाम को छोड़कर इस भौतिक संसार में सड़ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़े हैं। तो जगन्नाथ जी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें उस वियोग की भावना में, किसके, श्री वृंदावन धाम की वियोग की भावना में, श्री वृंदावन धाम के विषय में श्रवण करना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि वो जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं श्री गोलोक वृंदावन धाम के, उनकी भक्ति किस प्रकार से की जाए, कैसे? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। तो ये दोनों श्री जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु हमें ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हमारी भक्ति के सिखा रहे हैं। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी, हालांकि हैं वही श्याम सुंदर कृष्ण, परंतु चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे तो आप जानते हो चैतन्य महाप्रभु कहां खड़े होकर दर्शन करते थे? गरुड़ स्तंभ। और आपने देखा होगा गरुड़ स्तंभ काफी दूरी पर है ऑल्टर से, तो ये सुंदर कारण बताया गया है कि क्यों। अरे भाई, कोई जब यात्री दर्शन करने जाता है, हम भी तो आगे भाग कर, चलो चलो जल्दी जल्दी, ऑल्टर खुल रहा है भगवान का दर्शन करने, थोड़ा आगे से, अरे मैंने आलिंगन किया भगवान को। कई बार लोग आते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के पश्चात, जगन्नाथ जी को आलिंगन किया, वो सब तो अच्छी बात है, परंतु उसके पश्चात कुछ हुआ कि नहीं परिवर्तन? मैंने जगन्नाथ जी को इतने इतने पास से देखा, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार क्या उन्होंने आपको देखा? ये तो पता नहीं। वो कहते थे डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, परंतु इस प्रकार के भक्त बनो कि भगवान देखें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यही दिखा रहे थे कि जब वो दर्शन लेने जाते जगन्नाथ जी का, तो गरुड़ स्तंभ के निकट इसलिए खड़े होते क्योंकि वो जानते थे कि मैं यदि आगे आगे जाऊंगा तो जगन्नाथ जी मुझे बिल्कुल नहीं देखने वाले, परंतु गरुड़ जी बहुत महान भक्त हैं इनके, तो जगन्नाथ जी अवश्य ही गरुड़ जी को देखेंगे, और मैं यदि गरुड़ जी के बगल में खड़ा रहूंगा तो हो सकता है कि जगन्नाथ जी की नजर मेरे ऊपर भी पड़े। तो इससे क्या सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने कि हमें किसी न किसी भक्त को पकड़ना है। कल हम एक कथा की चर्चा कर रहे थे इस संदर्भ में, दक्षिण भारत में कांचीपुरम नामक क्षेत्र है। कौन कौन गए हैं कांचीपुरम, कौन से भगवान हैं वहां पर? वरदराज, भगवान वरदराज, और उनके हथेली पर, ऐसे उनकी हथेली है, और उन वरदराज जो वरदान देने वालों में राजा, तो उनके हथेली पर लिखा हुआ है मां शुचि, अर्थात घबराओ मत। क्यों? सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान कहे हैं मां शुचि। तो ये बहुत सुंदर कथा वहां की कि वरदराज जी के एक अनन्य भक्त हुए कांचीपूर्ण, और कांचीपूर्ण इनकी सेवा, एक बहुत विशेष सेवा ये वरदराज जी की करते रोज, पंखा ढुलाने की सेवा रोज। और वो इतने बड़े भक्त वरदराज जी के कि वो रोज वरदराज जी से वार्ता करते, रोज बातचीत होती दोनों की। देखिए ऐसे भक्त, भगवान उनसे बात करते थे रोज कि आज कैसा रहा दिन। सोचिए कि हम आपस में कई बार एक दूसरे से पूछ लेते हैं, और सब कैसे चल रहा है? तो कल्पना कीजिए कि कोई इतना महान व्यक्ति हमसे पूछे और सब कैसे चल रहा है, वो भी कौन? वरदराज जी, जो वरदान देने वालों में राजा। तो कांचीपूर्ण बहुत प्रसिद्ध थे कि वरदराज जी उनसे बात करते हैं। तो कांचीपुरम में एक बाहरी रूप से सर्वसाधारण भक्त भगवान के, उन्होंने एक बार कांचीपुरम से पूछा कि आप एक काम करेंगे, आप तो रोज बात करते हैं सुना उनसे, तो आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं उनसे, भगवान से। क्या प्रश्न है भाई? कि मैं भगवत धाम कब तक पहुंच पाऊंगा? हम सब भी ऐसा प्रश्न पूछना चाहेंगे भगवान से? कि नहीं बाद में थोड़ा पूछेंगे। तो ये प्रश्न पूछने के लिए कहा कि भगवत धाम कब तक मैं पहुंचूंगा। तो अगले दिन कांचीपूर्ण इन्होंने वरदराज भगवान से पूछा कि ये भक्त कल पूछ रहे थे कि ये भगवत धाम कब तक पहुंचेंगे। भगवान ने कहा इसी जीवन में, इसी जीवन में भगवत धाम पहुंचने वाले हैं। तो कांचीपूर्ण इतना प्रसन्न हुए, क्या सौभाग्य है इस, ठीक है, भगवान पूरा टिकट बुकिंग करके कंफर्म टिकट दे रहे हैं। तो जाकर खुशी खुशी उन्हें बताएं कि इसी जन्म में जाने वाले हो भगवत धाम। तो नाचते कूदते इतना प्रसन्न हुए वो भक्त। अब कांचीपुरम ने सोचा कि ये प्रश्न मैंने कभी पूछा नहीं अपने बारे में। तो फिर वो गए भगवान के पास और पूछा बाकी तो सब ठीक है, मैं कब जाऊंगा। तो सोचिए भगवान कांचीपूर्ण से क्या कहते। भगवान ने कहा जहां तक तुम्हारा तुम्हारी बात है कोई ठिकाना नहीं तुम कब जाओगे, बहुत समय लगेगा, पता नहीं कब। ये क्या, मैं जो दिन रात आपकी इतनी सेवा कर रहा हूं, आपका पुजारी हूं, डायरेक्ट पुजारी आपका, और रोज हमारी बातचीत चलती है, और मेरे विषय में आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों, क्या कारण है। तो भगवान कहे वो जो भक्त कल जिसके विषय में मैंने कहा वो भक्त तुम्हारा भक्त है, क्योंकि वो तुम्हारा भक्त है इसलिए वो इसी जन्म में भगवत धाम जाने वाला है, और तुम क्योंकि मेरे डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो इसलिए मेरी जो डायरेक्ट भक्ति करता है उसके आसार इतने नहीं होते जितने कि जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है उसके आसार होते हैं। तो सोचिए अब कांचीपुरम ने जब ये सुना, उन्होंने वो पंखा डुला रहे थे, पंखा वहीं रखा, बोले ये लो आपका पंखा और आप अब गर्मी लगे जो भी लगे मैं चला कहां आपकी किसी भक्त की सेवा करने। तो वो गए श्रीरंगम और वहां रंगनाथ जी के बड़े भक्त महापूर्ण उनकी सेवा में वो नियुक्त हुए। परंतु अब इनको तो सब जानते थे तो कौन इनको सेवक बनाता है, इनसे कौन सेवा लेगा। तो ये अपना भेष बदल कर गए, एक ग्वाले के रूप में गए। तो ग्वाले के रूप में महापूर्ण वो थोड़े वृद्ध भी थे तो वो पहचान नहीं पाए, तो रख लिया एक सेवक के रूप में, ग्वाला ठीक है गायों की देखभाल करेगा। तो ये गायों की देखभाल करते, महापूर्ण इनकी देखभाल करते, और एक नम्र सेवक के रूप में वहां रहने लगे। तो एक दिन हुआ क्या कि ये बारिश हो रही थी और महापूर्ण उन्हें लगा कि इतनी बारिश हो रही है, गायों को लेके छोटा सा बालक, छोटा सा उनको उनको पुकारते थे नाम पिल्लई, इस प्रकार से पुकारते, नाम पिल्लई का अर्थ है अरे बच्चा, मेरा बच्चा। तो इतनी वर्षा हो रही है, पता नहीं वो गायों को लेके कहाँ अटक गया होगा, कहीं वर्षा में पता नहीं क्या हुआ होगा। तो बाहर निकले ढूंढते हुए, नाम पिल्लई पुकारते हुए। तो हुआ क्या कि कांचीपूर्ण उनके सारे वस्त्र गीले हो गए, तो इसलिए उन्होंने वो गीले वस्त्र उतार कर वो जो उनके वस्त्र थे, कांचीपूर्ण का जो यूनिफॉर्म था वो कुछ समय के लिए पहन लिया, वस्त्र सूखे तब तक के लिए। तो महापूर्ण ने अब दर्शन कर लिया किनका, महाकांचीपूर्ण। ये तुम सेवक के रूप में महाप्रसिद्ध तुम पुजारी वरदराज भगवान के एक ग्वाले के रूप में यहां पर एक नौकर बने हुए, ये क्या, ऐसा क्यों किया? तब फिर उन्हें फिर से कांचीपुरम पालकी में बिठाकर भेजा गया। तो अब फिर जब उन्होंने जाकर वरदराज जी से पूछा तो वरदराज जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारी टिकट कन्फर्म में निकाल के बैठा हूं। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसे भक्त होने चाहिए जो हमें नाम पिल्ले ही बुलाए, कहाँ है मेरा बच्चा, और तब जाकर हमारी भी टिकट शायद मिलेगी जो वरदान देने वालों में राजा हैं उनके हाथों। क्या लिखा है? मां शुचा। तो वही भाव था श्री चैतन्य महाप्रभु का कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, परंतु मैं यदि गरुड़ जी इनके बगल में खड़ा रहूंगा तो भगवान श्री जगन्नाथ जी की नजर मुझ पर पड़ेगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि जगन्नाथ जी की कृपा यदि हमें प्राप्त करनी है तो नम्रता, जैसे जगन्नाथपुरी में ये कथा हुई, एक मिथिला का बहुत बड़ा विद्वान था जिसका नाम था उदयन आचार्य, बहुत बड़ा विद्वान था मिथिला क्षेत्र का ये, और बहुत प्रसिद्ध था, इसकी विद्वत्ता बहुत फैली हुई थी पूरे देश में। तो इसने स्कंद पुराण में पढ़ा, क्योंकि इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया करता था, तो स्कंद पुराण में इसने पढ़ा उदयन आचार्य ने जगन्नाथ जी के विषय में। तो इसने जगन्नाथ जी के विषय में कुछ ज्यादा सुना पढ़ा नहीं था, तो सोचा कि कुछ इनके विषय में जानकारी लें। तो जगन्नाथ जी के विषय में स्कंद पुराण में उसने पढ़ा कि जगन्नाथ जी का यदि कोई दर्शन भी कर ले तो उसकी मुक्ति निश्चित। तो इस उदयन आचार्य को लगा ये कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, क्या दर्शन करने से मुक्ति? अरे इतना सब मैं ग्रंथ पढ़ा हूं, इतना ज्ञान अर्जित किया हूं, तो मुझ जैसे को मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसे कोई आया राम गया राम हेरा गेरा नट्टू ठेरा जो भी, वो अगर दर्शन कर ले तो उसको मुक्ति निश्चित है उसकी, ऐसे थोड़ी हो सकता। तो फिर भी उसे लगा कि चलो मैंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है तो दर्शन भी कर लेता हूं बाई चांस। तो निकला जगन्नाथपुरी की तरफ, जगन्नाथपुरी के लिए निकला, और वो पहुंचा रात्रि के समय, तो दर्शन पट बंद हो गए थे। अब सुबह सुबह उसे जाना था, वो अपने शालिग्राम की पूजा किया करता था। तो हुआ क्या कि सुबह सुबह जब भगवान को उठाने के लिए पुजारी गए पंडा, तो द्वार खुले ना, अब जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार नहीं खुल रहे। तो इतना प्रयास किया, ये क्या हुआ, क्या द्वार क्यों नहीं खुल रहे, समय हो रहा है, उनको उठाने का समय हो रहा है, मंगल आरती का समय हो रहा है, द्वार ही नहीं खुल रहे। तो राजा को बुलाया गया, राजा भी आए, पूरी सेना को लेकर आए, अब हाथी घोड़े क्या कुछ नहीं लिए गए, सब लगा दिया, वो द्वार खुले ना टूटे ना कुछ नहीं हो रहा। सुबह हो गई, दिन उगा आया, द्वार नहीं खुल रहा। अब सभी परेशान बाहर खड़े, द्वार नहीं खुल रहा, द्वार नहीं खुल रहा। पूरा दिन बीत गया और फिर पुजारी हताश होकर वापस लौट गए, क्या करें, जगन्नाथ जी की शायद इच्छा नहीं है। जगन्नाथ जी इस प्रकार की बहुत सी लीलाएं करते हैं, हो सकता है जगन्नाथ जी की इच्छा न हो आज, या शायद आज सेक्लूजन में बिताना हो। तो फिर सपने में, पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी कहे उस पुजारी को कि मैं द्वार इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि मिथिला से एक पापी आया है जिसका नाम है उदयन आचार्य और उसे विश्वास नहीं कि जो कोई मेरा दर्शन ले ले मुक्ति निश्चित है उसकी। उसे इस वाक्य पर, स्कंद पुराण के इस वेद वाक्य पर विश्वास नहीं उसका। तो ऐसे पापी को जब तक पूरी से बाहर नहीं फेंकोगे तब तक द्वार नहीं खोलूंगा। अभी कौन है, ढूंढो इसे। तो अभी ये अपना शालिग्राम की पूजा वगैरह कर करिए जब गए, देखा तो वहां पर सारे पंडे, राजा के सैनिक सभी ढूंढ रहे हैं उदयन आचार्य, उदयन आचार्य। लगा अच्छा मैं इतना प्रसिद्ध हूं कि पहली दफा मैं आ रहा हूं, लोग मुझे पहले से जानते हैं। तो सभी यहां वहां ढूंढते हुए इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो इन्होंने कहा मैं हूं। क्या बात, क्या माजरा, क्या तुम? पकड़ के लेके राजा के सामने, राजा ने कहा दफा हो जाओ यहां से। क्या हुआ, क्या? जगन्नाथ जी ने आदेश दिया है, जगन्नाथ जी कहे कि तुम ऐसे पापी जो उनके वाक्यों पर विश्वास नहीं रखते, जो दर्शन किए करेगा भगवान का, जगन्नाथ जी का, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब इसे समझ में आया कि जगन्नाथ जी कौन है। तब फिर क्षमा याचना मांगने लगा कि अरे मेरे वजह से इतने सारे लोगों को दर्शन नहीं मिल रहा, मैं इतना बड़ा पापी। तो फिर वो नम्र भाव में जब क्षमा याचना मांगने लगा, तब फिर जगन्नाथ जी ने अपने द्वार खोले और फिर इस अहंकारी गर्वित विद्वान को भी जगन्नाथ जी ने अपना दर्शन दिया। क्योंकि तब तक उसने अपनी सारी विद्वत्ता त्याग कर वो एक नम्र सेवक की भावना में वहां पर उपस्थित हुआ। इसलिए तो इस कथा से जगन्नाथ जी ने ये दिखाया, और चैतन्य महाप्रभु भी जो गरुड़ स्तंभ के बगल में खड़े रहे थे, वो ये दिखा रहे हैं कि हम न तो अपनी आंखों से, न अपनी विद्वत्ता से, न टिकट लेकर हम जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाएंगे। हालांकि जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर आते हैं रथ यात्रा के दिन, हमें दर्शन देने के लिए और हमारा दर्शन लेने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ जी देखते हैं कि ऐसे बहुत से पापी हैं जो नहीं आना चाहते मेरे मंदिर में, तो कैसे मैं उनको अपनी सुंदरता से आकर्षित कर कर उन्हें भगवत धाम का टिकट दूं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ये कथा सुनाया करते थे, एक झाड़ू वाला था, जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाया करता था रोज। इसकी यही सेवा, जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना। तो इतने सारे यात्री आते थे रोज और हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए लाखों की संख्या में। तो ये यात्री इसे पूछते कि भाई तुम्हारा क्या सौभाग्य है, तुम तो साल भर यहां रहते हो, हमें तो साल में एक ही बार आने मिलता है, तुम तो साल भर यहां रहते हो, तो तुमने तो कितनी बार दर्शन किया होगा जगन्नाथ जी का। तो ये झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, इसने कहा मैं तो कभी भी जाके दर्शन ले सकता हूं, और आज तक उसने दर्शन नहीं लिया था, ये सोचते हुए कि मैं तो यहीं रहता हूं, कभी भी दर्शन ले लूंगा। ये लोग सब इतनी दूर से आए हैं तो इन्हें पता नहीं दर्शन मिलेगा कि नहीं। मैं तो यहीं पे रहता हूं। और श्रील प्रभुपाद कहे कि वो इस प्रकार से सोचते हुए कि मैं तो यहीं पे रहता हूं यहीं पे रहता हूं, बिना दर्शन लिए मर गया वो एक दिन। तो श्रील प्रभुपाद ये कह रहे थे कि कई बार हमारी भी वृत्ति ऐसी ही होती है। कह रहे मुझे पता है ना हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र मैं भूला नहीं हूं, ले लूंगा। और अंते नारायण स्मृति कहा गया है ना अजामिल की कथा में, क्या कहा, अंते नारायण स्मृति, अर्थात उसका अर्थ ये नहीं कि अंत समय में ही केवल नारायण की स्मृति, अंत का एक और अर्थ, जैसे वेदांत, वेदांत का अर्थ है कि वेद का जो सारांश है, वेद का अंत नहीं, वेद का क्या सारांश है उसे कहते हैं वेदांत। उसी प्रकार से अंते नारायण स्मृति का अर्थ है कि हमारी स्मृति का सारांश क्या होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारी स्मृति का सारांश होना चाहिए। तो इसलिए हमें जो जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सर्वसाधारण के लिए भी वो उपलब्ध हैं, परंतु वो सर्वसाधारण नहीं है। हालांकि अब तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे विश्व में जगन्नाथ जी इतने सर्वसाधारण तरीके से उपलब्ध किए गए हैं भगवान। आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के सबसे पहले अर्च विग्रह जगन्नाथ जी थे, और जगन्नाथ जी इस्कॉन में किस प्रकार से आविर्भूत हुए पता है आपको, बहुत रोमांचक कथा है ये। श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका पहुंचे और केवल कुछ अब हिप्पी जिन्हें कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं कि कृष्ण के कौन कौन से अवतार हैं, कैसे दिखते हैं, क्या लीलाएं हैं उनकी, कुछ ज्यादा पता नहीं, इतना पता है कि गीता सुनाई उन्होंने बस, और ये गीता रणभूमि पर सुनाई। तो सैन फ्रांसिस्को में श्याम सुंदर प्रभु और उनकी धर्मपत्नी मालती माता जी, वो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए, तो मालती माता जी वो श्रील प्रभुपाद के पास भागते हुए आई एक दिन और कहा, स्वामी जी मुझे आज दुकान में कुछ अजीब सी मूर्ति दिखी, मुझे लगा कि शायद आप जानते होंगे, आप भारत से हैं, आप जानते होंगे मूर्ति किन की है। प्रभुपाद ने कहा दिखाओ, तो उन्होंने प्रभुपाद के टेबल पे लाके रख दी, और वो मूर्ति छोटी सी केवल जगन्नाथ जी की। तो जैसे ही प्रभुपाद ने देखा जगन्नाथ जी को, प्रभुपाद ने तुरंत दंडवत किया, प्रभुपाद वहां पर साष्टांग दंडवत किए। तो अभी मालती माता जी को लगा कि तो लगता है कोई बहुत बड़े कोई व्यक्ति हैं कि ये तुरंत उठ खड़े हुए साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। तो मालती माता जी पूछती कौन है कौन है, प्रभुपाद कहे दिस इज कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ, ये भगवान स्वयं कृष्ण है जगन्नाथ जी के रूप में। और प्रभुपाद ने कहा इनके साथ और दो मूर्तियां भी होंगी। तो मालती माता जी ने हाँ और भी, एक सफेद से कोई दिखने वाले और एक पीले थोड़े, उनके कोई हाथ पैर कुछ ज्यादा दिख नहीं रहे थे लेकिन। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ उन्हें भी लेकर आओ। तो अब ये थोड़ा घबरा गई, क्यों, क्योंकि वो चोरी कर कर लाई थी जगन्नाथ जी को। इनके पास तो कुछ पैसे वैसे होते नहीं थे, तो वो स्टोर में शोकेस में जैसे शेल्फ होता ना, विंडो शॉपिंग लोग करते हैं उस प्रकार, तो शोकेस में उन्होंने ऐसे ऐसे एज अ डेकोरेशन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ईस्टर्न डेकोरेशन तो लगा रखा था। तो मालती माता जी को लगा कि स्वामी जी को खुश करती हूँ ये ले जाकर, परंतु पैसे नहीं, तो ऐसे उठा के पर्स में डाल लिया, इतने से तो थे। तो देखिए जगन्नाथ जी इस्कॉन में अवतरित हुए किसी की चोरी के रूप में। वो जो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण जो माखन चोर हैं, उनकी चोरी किसने की और वो प्रभुपाद के सामने रखे, और प्रभुपाद जी ने फिर उनसे कहा कि और वो दो को लेकर आओ। तो अब वो गई और वो दो को लाई कैसे, उनको भी चोरी कर कर लाई। तब फिर श्रील प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु, उनके जो पति वो कारपेंटर, इत्तेफाक से वो भी कारपेंटर थे, तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम ये बना पाओगे बड़े साइज में, ऐसे ही इसी शेप में इसी हाव भाव में, भाई इसमें क्या है, तो बहुत आसान है बनाना। तो सबसे पहले अर्च विग्रह बनाए गए जगन्नाथ जी बलदेव और सुभद्रा, इनके श्याम सुंदर प्रभु ने बनाए सैन फ्रांसिस्को में। और फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा अब उनको ऑल्टर पर बिठाया गया। फिर सभी को श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ जी के बारे में बताने लगे कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है हर साल जगन्नाथ जी को, तो वो सब पूछने लगे क्या रथ यात्रा क्या होती, रथ यात्रा रथ में बिठाकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को सवारी की जाती है, उनकी ले जाया जाता है। तो हुआ क्या कि एक दिन श्रील प्रभुपाद इनके दर्शन के लिए आए तो देखा ऑल्टर पर नहीं है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर पर नहीं है। तो प्रभुपाद ने पूछा कहां गए भगवान कहां गए, तो भक्तों ने कहा आप कहते थे ना ये भगवान बाहर जाते हैं रथ यात्रा में, तो आज हमने सोचा मौसम अच्छा है तो घुमाने ले गए हम भगवान। तो वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ऐसी मौसम अच्छा था तो घुमाने ले गए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। प्रभुपाद ने कहा नहीं वो साल में एक ही बार जाते हैं, नहीं तो ऑल्टर पे ही रहते हैं, ले जाओ फिर से लेके आओ उनको ऑल्टर पे। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि रथ यात्रा अब इनकी होनी चाहिए। तो पहली रथ यात्रा इस्कॉन की कैसे मनाएंगे पता है आपको, एक पिकअप ट्रक के पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखा गया, क्योंकि उनको क्या पता रथ कैसे बनाया जाता है और रथ को खींचा जाता है और वो सब परमिशन कौन देगा वहां पर, तो ट्रक चलाने का परमिशन तो मिल जाएगा। तो ट्रक के पीछे उनको सजाया गया और ट्रक वो अपने भक्त चला रहे हैं और पीछे सभी लोग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मैंने देखा पाश्चात्य देश में ज्यादा से ज्यादा जितने हमारे सेंटर हैं या भक्तों के घर हैं, अधिकांश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौरनिताय, इनका विग्रह सबसे ज्यादा, राधा कृष्ण के विग्रह बहुत कम हैं, परंतु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौरनिताय के विग्रह कहाँ कहाँ, ऐसे ऐसे जगहों पर कि जहां कृष्ण भक्ति आसपास में कोई कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। आप देखोगे कि भक्त का घर है और वहां पे जैसी एंट्री करोगे तो सुंदर ऐसा ही ऑल्टर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, गौरनिताय का और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। हालांकि जगन्नाथ जी को अब प्रभुपाद की कृपा से 56 से भी ज्यादा अलग अलग वैरायटी के भोग मिलते हैं खाने के लिए, पिज्जा जगन्नाथपुरी में पिज्जा वीजा ऑफर नहीं होता है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में जगन्नाथ जी को पिज्जा ऑफर होता है, चाउमीन नूडल्स बर्गर क्या क्या नहीं ऑफर होता है। क्योंकि श्री प्रभुपाद वो कहते थे जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, उड़िया नाथ नहीं है वो, कि केवल उन्हें उड़ीसा में बंद रखो। तो ये जो संबंध है गौर निताय और जगन्नाथ जी का बहुत विशेष है हमारे लिए, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें जगन्नाथ जी के विषय में जानने को मिला। तो मुझे याद है कि मैं केवल वो एक जनरल नॉलेज का बुक पढ़ता था, केवल वो जनरल नॉलेज की बुक में मुझे इतना जनरल नॉलेज मिला था, जगन्नाथ पुरी इज फेमस फॉर रथ यात्रा, एनुअल रथ यात्रा बस। अब वो जगन्नाथ है कौन और फिर क्यों उनकी रथ यात्रा मनाई जाती है, अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सब कुछ समझ में आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक बहुत ही गहरा मुद्दा एक समय कहा इसी संदर्भ में। उन्होंने कहा कि हम गौड़िया वैष्णव जो हैं, हमारे लिए सर्वोच्च धाम कौन सा है, कौन सा है? मायापुर? नहीं, उन्होंने कहा हम गौड़िया वैष्णव, हम जो हैं, हम राधा रानी के भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी के भाव में आए, हम श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं, तो हमारे लिए सर्वोच्च धाम है कुरुक्षेत्र, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा सहायता चाहिए अपने भक्तों की। किस लिए? कृष्ण को वृंदावन खींचने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि हम गौड़िया वैष्णव होने के नाते हमें केवल भगवान की भक्ति का भोग नहीं करना, सेवा करनी है, और सबसे ज्यादा सेवा की आवश्यकता कहां है? कुरुक्षेत्र। तो इसे क्या समझ में आता है? इसे यह समझ में आता है कि हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण को यदि हमें फिर से लाना है तो सबसे पहले हृदय को वृंदावन बनाना है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहे मोर मन वृंदावन, तो जब हम अपने हृदय को वृंदावन बनाएंगे और श्रीमती राधा रानी की सहायता करेंगे तो उनकी कृपा से हम श्याम सुंदर कृष्ण को उस रथ यात्रा के रूप में अपने हृदय में बसा पाएंगे। तो ये महत्व है रथ यात्रा का, और ये महत्व है हम गौड़िया वैष्णव जो कि श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण परंतु श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन इस तरीके से किया। हालांकि बहुत सी कथाएं हैं जगन्नाथ जी के संदर्भ में और जगन्नाथ जी के आविर्भाव के संदर्भ में, परंतु हम उसके पीछे जो मर्म है, जो उसका तात्पर्य है, वो समझना चाहेंगे कि हमारे लिए केवल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में नाचना यही केवल हमारी भक्ति नहीं उनके प्रति, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी के सामने कौन सी प्रार्थना की, वो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। कि न तो मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, न ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये कुछ मैं नहीं, ये पदवियां मेरी नहीं है, मेरी एकमात्र पहचान क्या है कि मैं जो गोपियों के भर्तु हैं श्री गोपीनाथ जी, उनके दासों के दासों के दासों का दास। और उस भावना में जब हम जगन्नाथ जी कि रथ यात्रा मनाने जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे गरुड़ स्तंभ पर खड़े होकर जगन्नाथ जी उनका दर्शन किया करते थे, उसी प्रकार से जगन्नाथ जी की भी नजर, और जगन्नाथ जी की नजर बहुत बड़ी है। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है, गुरु गुरुतम धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिष अनिमिष स्वाघ्री। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्री कृष्ण के ये दो नाम बताए गए हैं, निमिष अनिमिष। निमिष का अर्थ है जब कोई व्यक्ति पलकों को बंद करता है तब कहा जाता है निमिष। तो हमें भी व्यक्ति निमिष कह सकता है जब प्रवचन और जब चलता रहता है तो पलकें बहुत बंद होती रहती है। तो भगवान का ये एक नाम है निमिष, जिनकी पलकें बंद होती हैं। परंतु उसके साथ साथ भगवान का एक और नाम बताया गया है अनिमिष। अनिमिष का अर्थ क्या है? पलकें बिल्कुल बंद न होना, अनिमिष। तो ये दोनों कैसे संभव है? तो बलदेव विद्याभूषण इसके टीका में, विष्णु सहस्त्र नाम की टीका में, इस श्लोक के संदर्भ में कहते हैं कि भगवान जब अपने भक्तों को देखते हैं उनकी भक्ति करते हुए, और भक्ति में बहुत से अपराध हो जाते हैं, गलतियां होती हैं, हम फिसल जाते हैं, तो जब ये सब कुछ होता है तो भगवान निमिष पलके बंद कर लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। और जैसे ही भगवान देखते हैं कि कोई भक्त मेरी इतनी सी भी सेवा कर रहा है तो तुरंत भगवान अनिमिष बन जाते हैं। बिना पलक झपके वो इतनी सी भक्ति को भगवान रिकॉर्ड करते हैं, बिना पलक झपके। देखिए भगवान की कृपा, हमारी गलतियों को दुर्लक्षता और हमारी जो थोड़ी भी भक्ति, स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात, हमें बचा लेते हैं महान भय से। और इसलिए इस संदर्भ में भगवान के ये जो दो अवतार हैं, एक है रंगनाथ जी जो कि निमिष है, कि चाहे कोई कितना भी पापी व्यक्ति आए, रंगनाथ जी आंख बंद कर कर स्वीकार कर रहे हैं, और जगन्नाथ जी उनकी पलकें आंखें हर समय खुली हुई अनिमिष, वो हर समय देखते रहते हैं कि कौन सा भक्त कहां पर क्या अर्पित किया है, मुझे क्या सेवा की, मेरी कितना नाम लिया, मैंने कौन से मेरी भक्त की सेवा की। तुरंत भगवान उसे रजिस्टर करते हैं। हाल ही में मैं लंदन में था, तो लंदन में वहां पर भक्तिवेदांत मैनर में मंदिर में एक छोटा सा थिएटर बनाया उन्होंने, तो हर संडे को वो वहां पर ड्रामा दिखाते हैं, जो नए नए लोग आते हैं दर्शन के लिए तो उनके लिए अलग अलग ड्रामा करते हैं, प्रस्तुत करते हैं हमारे सिद्धांत पर आधारित। तो मैं सोचा कि देखते हैं किस प्रकार से ड्रामा करते हैं। मैं देखने गया तो ड्रामा उस संडे को था, इस प्रकार की स्टोरी थी कि अलग अलग प्रकार के कुकर्मी, कोई मांसाहारी मांस बेचता है, मांस खाता है, कोई जुआरी, कोई शराबी, ये जो चार नियम तोड़ने वाले, तो ये इस प्रकार की कहानी उन्होंने दर्शाई थी कि इनको यमराज जी के सामने प्रस्तुत किया गया और अब इनका लेखा झोंका, यमराज जी बैठे हैं और एक एक का देख रहे हैं, चित्रगुप्त को बुलाकर बताओ इसने कितने पाप किए हैं, ये मांसाहारी ने कितना मांस खाया, कितने जानवरों को मारा, तो सब चित्रगुप्त बताते हैं इतना इतना, फेंको इसे कुंभी पाक, जलते हुए तेल में पकाओ इसे भी। तो फिर यमदूत आते हैं और आके हुला 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 हुला
पकड़ के ले जाते
तो एकदम ऐसे भयानक, ऐसे बहुत उनका हाईटेक ड्रामा था, तो ये भयानक यमदूत आते हैं ऐसे, और ऐसे साउंड इफेक्ट, सभी ऐसे डर रहे थे, क्योंकि वो क्या दिखा रहे थे कि यदि ऑडियंस में भी कोई इस प्रकार का बैठा है तो अगला नंबर उसका होगा। तो बहुत अच्छा एक तरीका था लोगों को चार नियम कैसे पालन करवाएं। तो उसमें उसमें पूरा दिखाया था म्यूजिक के साथ, उसे मारा जा रहा है, सब तोड़ मरोड़ कर उसके शरीर को, क्या कुछ यमदूत नहीं कर रहे। तो ऐसे हो गए, चार को हो गए। फिर एक था शराबी, उसके संदर्भ में लास्ट में उसे, अब वो उसने सब देखा, इन सबको इस प्रकार से पीड़ा दी जा रही है, अब मेरा नंबर आया है। तो चित्रगुप्त को बुलाया गया। तो यमराज पूछते हैं, बताओ इसका अकाउंट में क्या क्या है, कितने कुकर्म हैं। तो चित्रगुप्त पूरा, इसने इतनी शराब बेची, इतनी शराब पी, इतने लोगों को गलत व्यसन करवाया, गलत पथ पे लगाया, ये सब वो सब। ये अब डर रहा है कि अभी यमदूत उधर दरवाजे पे खड़े थे कि जैसे यमराज जी इशारा करें ये टूट पड़े इसके ऊपर। तो सब कुछ सुनाने के पश्चात तो अब यमराज जी के हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, एक समस्या आ गई यमराज जी। समस्या? क्या समस्या? समस्या ये है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो जीवन भर इसने इतने कुकर्म किए नशे के संदर्भ में, परंतु मरने से पहले एक एंट्री है इसका, जिस समझ में नहीं आ रहा है कि उसके वजह से क्या इसे मुक्ति मिलनी चाहिए इसके दंड से, या दंड इसे फिर भी मिलना चाहिए। क्या एंट्री है कि इसने 20 साल पहले इस्कॉन के एक रथ यात्रा में 5 मिनट जगन्नाथ जी का दर्शन और कीर्तन सुना और देखा, 5 मिनट 20 साल पहले। तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होना, इसकी गति क्या होनी चाहिए। यमराज जी ने जैसे ही सुना, 5 मिनट, इसने 5 मिनट जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और फिर यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसे वो जगन्नाथ जी के दर्शन का एक ट्रेलर और वो कीर्तन का एक रिकॉर्डिंग कुछ जो भी सुना। तब फिर वहां पे उन्होंने वो सीढ़ी लगाते, तो ये इसे याद आ जाता है, इसे याद आ रहा है, तो उन्होंने वो सीढ़ी लगाई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। 5 मिनट उसे याद आ गया, हाँ मुझे याद है, मैं 20 साल पहले अभी भी वो जो जगन्नाथ जी का इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें और वो रथ और वो कीर्तन और वो महाप्रसाद, 5 मिनट मैंने दर्शन किया, मुझे याद है, याद है, याद है। तो यमराज जी ने कहा, ठीक है इसे छोड़ दो, इसे फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा, ये फिर से पृथ्वी लोक जाएगा, और अब तुम अपने जीवन को सुधारो। जैसे ही वो वहां से छूटता है, वो ड्रामा में दिखा रहे थे, वहां से छूटा, भागा कहां, इस्कॉन की रथ यात्रा कहां चल रही है, ढूंढा इस्कॉन की रथ यात्रा कहां चल रही है, और जहां रथ यात्रा चल रही वहां पर सामने 5 मिनट नहीं, 5 घंटा देखता गया, देखता गया और कीर्तन करता गया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। इसके पश्चात फिर उस ड्रामा में अंत में दिखाया गया कि उसने अपना अगला मनुष्य जीवन केवल जगन्नाथ जी की सेवा में उसने पूरा बिताया, और उसके पश्चात फिर विष्णु दूत आए, और विष्णु दूत आकर उसे भगवत धाम ले गए। बोलो श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा मैया की, शील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की ताई गौर प्रेमानंदी। तो ये भजन हम गाएंगे जगन्नाथ जी का गुणगान करते हुए, और जितना हो सके आप दर्शन करते रहो, 5 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं, और जगन्नाथ जी का कीर्तन तो हम कर ही रहे हैं। तो हमें फिर आशा है कि कम से कम चित्रगुप्त के सामने, यमराज जी के सामने तो नहीं जाना पड़ेगा, यदि जाना भी पड़े तो वो एंट्री होगा, और वो एंट्री के वजह से वहां नो एंट्री लग जाएगा, परंतु फिर से हमें भगवान की सेवा करनी मिलेगी। जय जय जगन्नाथ शचिरानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदना।